ठहर जा है माना, किधर जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तो जिधर जा रहे हो। ठहर जा है मानव, किधर जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तो जिधर जा रहे हो। ठहर जा है मानव, किधर जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तो जिधर जा रहे हो। ठहर जा, ठहर जा, ठहर जाए मानो, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जाए मानो। जीवन है साधनों में उलझा हुआ तेरा मन है, बीच भंवर में फंसा जीवन है। सुनहरा मन को मिथ्या है, मन को तू बहका रहे हो, वो मंजिल नहीं तो जिधर जा रहे हो। ठहर जा है मानव,
ओम शांति। तो आज प्रश्न है, मायाजीत बनने का सहज साधन क्या है? मायाजीत बनने का सहज साधन क्या है? प्रश्न नंबर 101 है ये, और इसकी डेट है 7/12/1983। वैसे मायाजीत बनने की बहुत सारी युक्तियां हैं, लेकिन यहां बाबा ने एक युक्ति बताई है, मायाजीत बनने के लिए अपनी बुराइयों पर क्रोध करो। क्रोध करना लाजमी है, लेकिन बुराइयों पर क्रोध करो। जब क्रोध आए तो आपस में नहीं करना, बुराइयों से क्रोध करो। अपनी कमजोरियों पर क्रोध करो तो मायाजीत सहज बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों पर क्रोध करो तो मायाजीत सहज बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपनी कमजोरियों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि अपनी कमजोरियों को प्रत्यक्ष करने के लिए हम बहुत सारी बहानेबाजी करते हैं। अपनी कमजोरियां हम दिखाना नहीं चाहते, लेकिन हमें उनका पता होता है, ये हमारी कमजोरियां हैं। अगर हम अपनी कमजोरियों से अनभिज्ञ रहें तो फिर मायाजीत बनना मुश्किल हो जाता है, और अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए हम फिर दूसरों से कुछ भी युक्तियां रचते हैं अपने को सिद्ध करने के लिए। कई दफा हमको ऐसा भी, जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो सामने वाले पुरुषार्थ अच्छा करते हैं, लेकिन थोड़ा पुरुषार्थ करने के बाद उनकी बातों से लगता है जैसे हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, हालांकि वो ये सोच रहे होते हैं कि हम दूसरे को सामने ऐसा प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि हम गुप्त हैं, लेकिन उनकी बातों से लगता है जैसे अपना पुरुषार्थ को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो हमारे में कौन कौन सी ऐसी कमजोरियां हैं? बाबा ने कहा भी है, तीव्र पुरुषार्थी जो होते हैं वो अपनी कमजोरियों का चिंतन करके उनको निकालने का जो पुरुषार्थ करते हैं वो भी तीव्र पुरुषार्थी है। तो कौन कौन सी ऐसी कमजोरियां हैं जिन पर हमको अंदर ही अंदर क्रोध अर्थात योग अग्नि से उनको भस्म करना है? तो कौन कौन सी ऐसी हमारी कमजोरियां हो सकती हैं ताकि हमको माया जीत बनना है? जो बाबा ने संडे की मुरली में कहा था, तीन बातें, माया जीत, मन जीत और जगत जीत बनना है। तो हमारी कमजोरियां कौन सी हैं? दूसरे की बातों को हाँ, कोई भी हमें कुछ भी कहता है तो हम डिसहार्ट हो जाते हैं, माना दिल शिकस्त हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में फीलिंग आती है, ये भी एक कमजोरी है। महिमा को और डिसरिगार्ड को दोनों को स्वीकार कर लेते हैं। और एक सबसे बड़ी कमजोरी है अपने को कमजोर समझना, ये भी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये तो मेरे से होता ही नहीं है, हम तो भी लास्ट में आए हैं, ये हमारे से आगे चले गए हैं, हमारे बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं है, ये भी कमजोरियां हैं। हम अपने जैसे मन को कमजोरी की कमांड पहले दे देते हैं और धीरे धीरे स्वीकार कर लेते हैं उसको कि तो होगा ही नहीं, एक दिन रह गया, बीमार हो जाऊंगा, होमवर्क तो होगा ही नहीं। फिर मन को पहले से हमने कमजोर बना दिया। पहले भी कई दफा बताया ना कि हाँ में यस में एनर्जी है, अगर हम मना कर देते हैं ना तो फिर हमारा शरीर भी वैसे चलता है, क्योंकि मन को हमने कमांड पहले से वैसे दे दी और वो फिर सारी कमांड जो हमारी कर्म इंद्रियों को प्रभावित करना शुरू कर देती है। अगर हमने हाँ किया है, अगर हमको घर में कोई काम आ जाता है अपने परिजनों का, स्वजनों का, तो उसको हम कैसे करते हैं? तब बीमारियां कहाँ जाती हैं? मान लीजिए हमको कोई अगर बुखार है, कुछ भी है, और हमारे माता पिता आ रहे हैं लौकिक वाले दूर 20-25 साल के बाद, बड़ा मुश्किल से जिनको हमने कई दफ़ा लेटर लिखे, मधुबन में आओ, बुलाया उनको, और वो आ गए हैं और रात को 2 बजे ट्रेन पहुंच गई है, तो उसमें बीमारी कहाँ जाएगी? उसमें कैसे हमने अपने मन को शक्तिशाली बना दिया? तो ऐसे सूक्ष्म रूप से जो कमजोरियां धीरे धीरे वो शक्तिशाली बन जाती हैं कमजोरियां, और वो शक्तिशाली कमजोरियां हमारे मन को कमजोर कर देती है, अर्थात माया शक्तिशाली बन जाती है। और शक्तिशाली बनाने के लिए दरवाजा किसने खोला? हमने खुद ही खोला। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे में नेगेटिव एनर्जी भरती जाती हैं, भरती जाती हैं, भरती जाती हैं। हमने जैसे माया को आने की स्वीकृति दे दी, तो स्वयं की कमजोरियां जो उनको, बाबा ने कहा ना, बच्चों की दूर की नजर तो बहुत अच्छी है लेकिन नजदीक की नजर कमजोर होगी।
दूसरे को देखने की नजर,
हाँ, दूर की नजर अर्थात तो दूसरे की कमी कमजोरियों को देखने की नजर अच्छी है, लेकिन स्वयं की कमजोरियां नजर नहीं आती हैं। और स्वयं की कमजोरियां एक तो संगठन में आने से हमको पता चलती हैं और दूसरा खुद पता भी होती हैं, लेकिन संगठन में आने से हमें कमजोरियों को समाप्त करने का बल मिलता है, शक्ति मिलती है। अगर हम अकेले के लिए रहते हैं तो सोच लेते हैं ठीक है, हम बाबा ने न्यारा प्यारा होने के लिए तो कहा ही है, लेकिन जब संगठन में आते हैं तो फिर न्यारे प्यारे की परिभाषा भी पता चलती है कि न्यारा क्या और प्यारा क्या, कहाँ न्यारा होना है, कहाँ प्यारा होना है। और कमजोरी कौन सी है? एक तो ये होगी बहानेबाजी की, जो भी हमने किया कि जो भी हमको सेवा मिलती है उसमें हम बहानेबाजी कर देते हैं, ये कमजोरी है। और हमारे मन की कौन कौन सी कमजोरियां हैं जो हमको माया जीत बनने के लिए रोकती हैं? कंपटीशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, सामने वाले के पास देखते हैं कि इसको पुरुषार्थ करने के लिए तो बहुत अच्छा साधन मिला हुआ है, समय भी इनका अच्छा है, इनकी दिनचर्या हमारे से बेहतर है, तो हम कंपैरिजन करने लग पड़ते हैं, तो भी ये भी एक कमजोरी का कारण बन जाती है। बाबा ने कहा यही जो संडे को मुरली चली है 17/2/2011 की, उसमें कहा बाबा ने कि समय अनुसार मुरली के सेलिब्रेशन के लिए साधन तो मिले हुए हैं, तो उसमें अपने अनुसार मुरली जरूर सुनो, क्योंकि सेवा सबकी अपनी अपनी, सेवा की फील्ड अपनी अपनी है, समय सबका अपना अपना है, परिस्थितियां सबकी अपनी अपनी है, कहां किसको कैसा टाइम मिलेगा, किसको कैसा टाइम मिलेगा, तो अपनी दिनचर्या का खुद ही निर्माण करना है। हमको दूसरे की दिनचर्या नहीं देखनी कि हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट। जैसे कल भी रात को बताया ना क्लास में कि जो 10 बार ड्रिल करने के लिए बाबा ने कहा, जितनी भी करो बार बार करो, 10 बार करने का, तो क्लास में कहा कि जब भी हमको टाइम मिलता हम अगर सारे दिन में भूल जाते हैं तो हम ये नहीं सोचे हमको दोबारा नहीं करनी है, अपनी दिनचर्या अनुसार हमको करना है। अभी ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है तो ट्रैफिक कंट्रोल में कोई फोन सुन रहा है, बहुत जरूरी काम है और उसको बातचीत करना जरूरी है, सेवा चल रही है उसमें, उसमें तो कर नहीं सकता है लेकिन उसके बाद तो कर सकते हैं ना। तो हम ये थोड़ा सोचे कि ट्रैफिक कंट्रोल में हम कोई बाहर से फोन आए तो हम उसको अटेंड नहीं करेंगे, हमको यू करना है, तो अपनी दिनचर्या तो उसमें सेटिंग करनी पड़ेगी। हाँ जी, दिल से करनी है। हाँ, दिल से करना है। जैसे संदेश में विजय मोहिनी बहन जी न्यूयॉर्क को संदेश दिया कि ट्रैफिक कंट्रोल में भी थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते जाओ, 5-5 मिनट भी व्यक्तिगत रूप से पुरुषार्थ करना है। तो ये हमको ये नहीं आधार नहीं उठाना, टाइम का भी आधार नहीं। बाबा ने कहा ना समय तो आपकी रचना है। मुरली में था एक बार बताया था बाबा ने कि समय पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है कि मेरे रास्ता कहां पहुंचे हैं, है ना, रचना आगे दौड़ रही है और रास्ता पीछे है, बुजुर्ग हो गया रास्ता दम नहीं रहा इतना, तो हम रचता है जी, समय आने पर ठीक हो जाएंगे। हाँ, समय शिक्षक हो गया, इसी मुरली में था उस संडे की ये जो, तो समय जो वो वास्तव में हमारा कितना बड़ा सहयोगी है, समय में हमको क्या क्या पाठ पढ़ा रहा है, समय से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ हाँ, वैराग्य तो समय अनुसार परिस्थिति दिलाएंगी, लेकिन वो फिर नंबर भी उनको ही मिलेंगे, समय को ही मिलेगी। तो वर्तमान समय हमको जो करना है, जो भी कमी कमजोरियां हमारे में सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप से हैं, उनको निकालने के लिए हमको समय बहुत कुछ सिखा रहा है। अभी इतना बड़ा हमको जो टाइम मिला है इस कोरोना काल में, तो ये टाइम तो हमको पुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए मिला है, तैयारी के लिए। एग्जाम के पहले जो समय मिलता है तैयारी के लिए, वो ही समय चल रहा है वास्तव में भी। तो अपनी कमजोरियों की लिस्ट बनाने की, कौन कौन सी कमजोरी हमको माया जीतने बनने दे रही है। माया तो हमारे मन के कमजोर संकल्पों का निर्माण जो हम करते हैं वही तो माया है। माया और चीज क्या है? जब हम अपने स्वमान की सीट से उतर जाते हैं, जब हमारी सीट पर दूसरा बैठ जाता है तो फिर दूसरा जो ऑर्डर चलाएगा वही करेगा। तो माया जब हमारे स्वमान की सीट पर वो खुद बैठ जाती है तो हमारे संकल्प भी उसी तरह के चलने लगे पड़ेंगे, क्योंकि दुश्मन ने हमारी सीट पर कब्जा कर लिया है। तो दुश्मन तो फिर अपनी योजनाएं तैयार करेगा ना कि कैसे इस राज्य को हड़पना है, क्योंकि लंबे समय से हमने दोस्ती बना के रखी थी, अब उसको हम छोड़ रहे हैं, तो वो तो मौका देख रहा है कब राज्य का, हमारा राज्य हमारे हाथ में वापस आए, हिलाएगा सिर पर बैठ के। तो हमको देखना है कि हम अपने सोमान की सीट से ना उतरें। बहुत सारी मायाजीत बनने के सह साधन हैं। एक है ये, बाबा ने सबसे पहले जो मुरली की बात बताई कि मुरली कभी मिस नहीं करनी है। मुरली तो संगठन में सुननी है, बाकी व्यक्तिगत रूप से एकांत में भी पढ़नी है, उसका चिंतन करना है, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालने हैं, उसको बार बार मन में दोहराना है, क्योंकि मन में जो बाबा ने कहा शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना है, तो एक तो है मुरली, दूसरा उसका चिंतन, चिंतन से हमारे शुद्ध संकल्प बढ़ते हैं। एक है बाबा के शब्द हूबहू याद करना है, लेकिन उन शब्दों में, उन शब्दों को हम नए तरीके से याद करने की कोशिश करें, जरूरी नहीं हो वो हमको याद रहें, है ना। जैसे सोमान है, आप सोमान बाबा कहते हैं तुम विश्व कल्याणकारी हो, तो इस अगर केवल हम इतना स्मृति में रखते हैं तो इस खाली इसकी स्मृति से कुछ नहीं होगा, उसके साथ में कुछ बहुत कुछ जोड़ना पड़ेगा। और अगर हम विश्व कल्याणकारी हैं तो विश्व कल्याणकारी के कर्तव्य क्या हैं, विश्व कल्याणकारी की सोच कैसी होगी, विश्व कल्याणकारी के संबंध संपर्क कैसा होगा सबके साथ, विश्व कल्याणकारी की व्यवहारिकता कैसी होगी, उसके बोल कैसे होंगे, उसके संकल्प कैसे होंगे, उसकी एक्टिविटी कैसी होगी, उसकी सेवा का दायरा कैसा होगा, निस्वार्थ होगा, बेहद में रहेगा, हमेशा इस देश से डिटैच रहेगा, वो कहां बैठेगा, कैसे चलेगा, किससे संबंध संपर्क होगा। तो एक संकल्प से बहुत सारे संकल्प जुड़े हुए हैं, एक एक संकल्प की अपनी बहुत बड़ी रचना है। तो हमको नए शब्दों नए संकल्पों के साथ शुद्ध संकल्प जमा करने हैं, क्योंकि नवीनता चाहिए। अगर ब्राह्मण जीवन में नवीनता नहीं है तो पुराना पुरुषार्थ भी जैसे माया जैसा लगता है, मूर्छित कर देता वो कि रोज रोज भाई रोज रोज भाई। तो कुछ नए संकल्पों का निर्माण करना है, इसलिए टॉपिक जो दिए जाते हैं कहीं से भी हमको मिलता है होमवर्क, तो हमारी भलाई के लिए, हमारे हित के लिए है वो, हमारे नए संकल्पों की ऊर्जा का निर्माण होता है उसमें। हाँ, नए 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 तो एक ही टॉपिक पर अगर सबको दे तो सबके वो अपने अपने विचार होंगे, अलग अलग संकल्प मिलते हैं वो, इसलिए एक टॉपिक अगर सबको देंगे तो उसमें अलग अलग प्रकार से मक्खन निकलेगा, तो वो भी मायाजीत बन जाएंगे हम। तो मुरली का चिंतन है ना, एक तो मुरली से हमको बार बार गहराई से पढ़ना है और उसके ऊपर चिंतन करना है, एक एक सोमान के ऊपर चिंतन करना है, और चिंतन हमारी बुद्धि को विशाल बनाएगा। और बताया ना, बुद्धि तो एक बहुत बड़ा हमको खजाना मिला हुआ है, बाबा ने जो वरदान दिया है दिव्य बुद्धि का वरदान। तो बुद्धि अच्छी होगी, विशाल बुद्धि होगी, तो सेवा भी अच्छी कर सकेंगे और सक्सेस भी मिलेगी, नए नए तरीके हम उसका निर्माण कर सकते हैं। हमने संसार में भी बताया ना, बुद्धि अगर अच्छी है तो बिजनेसमैन क्या करता है, छोटे से बिजनेस से बड़े बिजनेस तक पहुंच जाता है, अनपढ़ माताएं हैं करोड़पति हो जाती हैं। कई अच्छी अच्छी स्टोरियां न्यूज पेपर में आती हैं कि जो माताएं बिल्कुल अनपढ़ थी, थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आजकल उसका बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया है। छोटे छोटे लघु उद्योग जो होते हैं, हाँ माना बड़े बड़े औहदे तक, बड़े बड़े पदों तक पहुंच जाते हैं लोग, किस लिए, बुद्धि को चलाते हैं। तो हमारी बुद्धि को तो बाबा ने वरदान दिया हुआ है दिव्य बुद्धि बाबा, लेकिन दिव्य बुद्धि बाबा केवल इतना चिंतन करने से थोड़ा नहीं होगा, उसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस है ना, उसको तो हमको अप्लाई करना पड़ेगा ना। केवल इतना सुन के बैठ गए कि बाबा ने वरदान तो दे दिया, मेरी बुद्धि दिव्य हो गई, हाँ वो हमको इंजन है, पीछे उसके माल जो भरने के लिए डब्बे भी बहुत चाहिए ना। तो उसी तरह से अपनी बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए चिंतन की बहुत बहुत आवश्यकता है, और जितना चिंतन करते चलेंगे हमारी चिंताएं स्वतः खत्म होती जाएंगी, चित्त को चैन मिलेगा, शांति मिलेगी, राहत मिलेगी, क्योंकि हम ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। तो हम मन मत मिक्स नहीं करें, आज था ना मन मत, आज के वरदान में शायद, हाँ आज के वरदान में है मन मत, क्योंकि मन मत जब हम मिक्स कर देते हैं, मन मत क्या कि मेरे से तो होगा ही नहीं, बहुत करके देख लिया, बहुतों को देखा है वो भी ऐसे तो कर रहे हैं, क्या क्योंकि क्वेश्चन में चले जाएंगे, वो क्यों लगी रहेगी। तो माया का आह्वान हम नए नए तरीके से खुद ही करते हैं,
दूसरों को देखना ही बहुत बड़ा माया
है, दूसरों को देखना ही बहुत बड़ी माया है। तो माया का चिंतन, अच्छा मायाजीत बनने का एक भाव ने कल की मुरली में था, परसों की शायद, अच्छे अच्छे गीत सुनो, अगर जब कल की मुरली में था सोमवार, तो अच्छे अच्छे गीत सुनो, बाबा ने कहा तुम बच्चों के लिए बनवाए हैं, है ना। कल की मुरली का गीत कौन था, कौन सा था, नहीं भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं, अरे नीचे बुलाला, ठीक है। तो पुराने पुराने गीत सुनो तो वो भी मायाजीत बन जाएगी। कहा जाता है खाली मन शैतान का घर, माया आती कहाँ है, जब हम मन को खाली रखते हैं तो धीरे धीरे मन भी हमारा क्या बन जाता है, खंडर बन जाता है, और खंडर में कौन रहता है, बताया था ना, भूत प्रेत रहते हैं, क्या वहां जाले लगे होते हैं, मकड़ियां घूमती रहती हैं, है ना, और वहां बहुत कूड़ा करकट रहता है, वातावरण कैसा होता है वहां, तो हमारा मन भी अगर खाली रहता तो अंदर में खंडरी अर्थात माया के अनेक प्रकार के भूत हैं, कमजोरियों के भूत हैं, तो वो भी मकड़ी के जाले लगे रहेंगे अंदर। हाँ, व्यर्थ संकल्पों का जाल बोझ बन जाएगा। आज ही वरदान में था ना, व्यर्थ संकल्पों के बोझ से मुक्त होंगे तो सूक्ष्म पतन का अनुभव कर सकेंगे, तो वो कैचिंग टचिंग होगी। हाँ, बाबा ने कहा घास लेट में डाल दो, उसको झंक निकल जाएगी। तो मन को खाली नहीं रखने को, कुछ ना कुछ हमको उसको होमवर्क देते रहना है। मन में शुद्ध संकल्पों का खजाना बढ़ता जाएगा तो हमारा चिंतन स्वतः वैसा आरंभ हो जाएगा। हमारे चिंतन का आधार है हमने मन में जो संकल्पों का स्टॉक रखा हुआ है। आय का सही स्लोगन भी ऐसे ही है, व्यर्थ को फुल स्टॉप और फुल शुभ शुभ कामना का फुल स्टॉक जमा करो। हाँ, स्टॉक, तो फुल स्टॉक हमको जमा करना है शुद्ध संकल्पों का, तो व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाएगा। व्यर्थ का बोझ हमने अपने मन के ऊपर रखा हुआ है इसलिए हम उड़ नहीं पाते हैं, इसलिए माया बार बार आक्रमण करती है, क्योंकि माया की ही प्रॉपर्टी को हमने अपने मन में भर के रखा हुआ है। अब दूसरे की प्रॉपर्टी कब्जा करे तो क्या हाल होगा, तो वो तो अपनी प्रॉपर्टी को लेगा ना। तो माया के हमने अनेक प्रकार के ऐसे संकल्प मन बुद्धि में भर के रखे हुए हैं, इसलिए माया जीत बन नहीं पाते हैं। हाँ, एक सेकंड में शरीर बन का इंजेक्शन परसों के मूल्य में था, कल का था वरदान में। तो अगर पागल हो जाता है तो अशरीरीपन का उसको इंजेक्शन लगा दो, व्यर्थ संकल्पों का। नेचुरली ये एक संकल्प जो है हमने भी कई दफा देखा है, अगर योग में कोई दूसरा चिंतन नहीं चलता केवल इतने सोच लो मैं अशरीरी हूं, अशरीरी सीधे ही परमधाम पहुंच जाते हैं। और परमधाम तो एक एनर्जी का भंडार है, वहां एनर्जी का जैसे खान है वहां बहुत, और वहां मन शांत हो जाता है एकदम, कोई संकल्प ही नहीं, क्योंकि वहां तो देह है ही नहीं है। चिंतन कहां चलता है, व्यर्थ चिंतन, जब हम देह की स्मृतियों में रहते हैं, देह के संबंधों की स्मृति में रहते हैं, जब हम ज्यादा देहधारियों से संबंध संपर्क बढ़ाने लगते हैं तो माया अनेक प्रकार से आती है। और बाबा ने कहा तुमको तो शरीर छोड़ने का पुरुषार्थ करना है, कल की मुरली में था। हाँ, कोई विषय में ऐसा टीचर नहीं जो मरने का पुरुषार्थ कराए, लेकिन इस मरने में क्या है, जीना है, इस मरने में सुख है, इस मरने में बहुत सारी प्राप्तियां हैं, इस मरने में स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलेगा, ऊंच पद पाओगे। और मरना कैसा है, मीठा मरना है। हाँ, प्रश्नोत्तर में रूहानी सेल्वेशन आर्मी हो ऐसा बना कुछ। तो मायाजीत बनने की अनेक प्रकार की युक्तियां हैं, मन को बिजी रखने का, मन को खाली नहीं रखने का। खाली रखेंगे तो फिर संकल्प कैसे आएंगे, पहले जैसे भूत प्रवेश करता है पहले क्या होता है, वातावरण बिगड़ जाता है एकदम सारा, डर लगता है, डरावना सा हवा चलती है, फिर पर्दे हिलते हैं, फिर खिड़कियां धीरे धीरे हिलती हैं, उनके शीशों की आवाज आती है, और एक शीशा टूट गया तो फिर तो सोच रहे थे आ गया भूत, अभी खिड़की से घुस गया है। तो अनेक प्रकार के मन में भी ऐसे संकल्प आते हैं, तो धीरे धीरे माया भी अपना कब्जा कर लेती है। और माया किस रूप में आती है, माया फिर एक तो बताया कंपैरिजन करते हैं, दूसरों को देखते हैं, और कैसे आती है,
जितना हम जानते हैं उतना ही उसी को ज्यादा समझ लेते हैं, फिर दूसरे से लेने की भावना नहीं रखते तो वो भी कमजोरी बन जाती है।
हाँ, ये सोचते हैं कि हम जो ना अभी संपन्न बन गए, अभी कोई बात नहीं, हम तो भाई हो गए, हाँ अभी योग करो मियाँ मिठू, अपने को मना समझते पंसारी समझ लो, कि चूहे को हल्दी की गांठ में समझ बैठे पंसारी, अर्थात हम सोचते हैं बहुत चिंतन कर दिया, बहुत क्लासें कर ली हैं, अभी तो योग ही लगाते हैं। लेकिन योग भी वास्तव में बहुत जरूरी है, लेकिन चिंतन अपनी जगह है। हाँ बिल्कुल, वो भी हो सकता है। तो हम अपने आप में इतना समझ जाते कि हमको ज्ञान बहुत हो गया है अभी, इसलिए क्या करना है, लेकिन नहीं, हमको अंत तक सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। अभी कुछ तो कुछ जो अभी तक तो हमने कुछ जाने नहीं है इतना, अभी तक तो कुछ बहुत कुछ जानना बाकी है। बाबा ने कहा मैं तुमको ज्ञान की एक ही बूंद देता हूँ, और उस एक बूंद से इतना परिवर्तन हो जाता है। अब तो ज्ञान बहुत सारा बाकी है जो समझने का है। और कमजोरी कौन सी होती है? कमजोरियां पैदा तब होती हैं ब्राह्मण जीवन में आने के बाद ही हमको अपनी कमजोरियों का पता चलता है, पहले थोड़ा नहीं पता होता है। संस्करण में जब हम आते हैं तो हमारे संस्कारों का टक्कर होता है, हम अपने संस्कारों को मिलाना मुश्किल हो जाता है हमको, तो भी ये भी हमारी कमजोरी है ना। संगठन में जैसे कल शायद एक दो दिन में आएगा, अभी सहन शक्ति मुरली में आएगा नेक्स्ट संडे में, तो सहन शक्ति की कमजोरी है। अगर हम थोड़ा सा भी सहन नहीं करते हैं तो हमें खुद ही बहुत बड़ा घाटा पड़ जाता है। एक मिनट की बात होती है, एक सेकंड की बात होती है, अगर उसमें थोड़ा शांत रहें तो एक चुप साओ सुख, उसके परिणाम बहुत सार्थक होते हैं। बाबा ने कहा ना, तुमको झुकना मरना है, पिछले संडे की मुरली में था, झुकना है तुमको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़ी सी बात है और हम अपनी स्थिति को, क्योंकि स्थिति बहुत कीमती है, छोटी सी बात पर हम अपनी स्थिति को बिगाड़ लें तो फिर इसको ब्राह्मण थोड़े निकालेंगे, है ना। जिससे हाँ हाँ, प्रतिशोध की भावना होती है, हमारी अपनी कमजोरी होती है, तो उसमें हम थोड़ा उसमें अपनी कमजोरियों पर क्रोध करें, अर्थात क्रोध करना माना हम अपने ज्ञानियों को थोड़ा बढ़ा दें, दूसरे को देखा, दूसरों को देखने की जो आंख है ना, ये हमको धोखा दे देती है। इसलिए बाबा ने कहा स्वयं को देखो और बाप को देखो, फॉलो फादर, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं है, फॉलो फादर। हाँ फॉलो जो दादियां हैं जिन्होंने अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया है, जिन्होंने आज भी हम दादियों को देखते हैं कितने उमंग उत्साह में है इस एज में होते हुए भी, है ना। तो अपनी कमजोरी का चिंतन करना है, कौन कौन सी कमजोरियां अभी। हाँ जी हाँ, हमारा रात को मुरली पढ़ने के बाद ही दादियां सोती थी। अभी आजकल तो कमजोरियां क्या, अलग अलग तरीके से हाईटेक कमजोरियां आ गई हैं, मोबाइल की है कमजोरियां, बताया था ना उस दिन रावण तो जैसे हमारी जेब में प्रवेश कर गया बायोस्कोप के रूप में, तो हाईटेक कमजोरियां हैं। जैसे
जैसे एक भाई बोले रात को सात नाते गलत गलत, तो क्या विचारण की आदत बना रहे
हैं। हाँ
अमृत वेला सोता है, पर जागेगा अमृत वेला सो गया।
ये भी वास्तव में कमजोरियों को देखो, अगर स्वप्न आते हैं रात को, वो कह रहे हैं कि स्वप्न आते हैं तो उसमें वो सोता नहीं है, फिर सवेरे सो जाएगा, लेकिन वो वास्तव में ठीक भी दी नहीं है। उस स्वप्न आने का कारण पीछे बैक दिनचर्या दूसरी होगी कुछ। बाबा ने कहा स्वप्न का आधार है साकार जीवन, ये मुरली है एक अव्यक्तवाणी, स्वप्न का आधार है साकार जीवन। अगर हमने सारे दिन में इन आंखों से कुछ देखा हुआ है, या कुछ हमारा खाना पीना गलत है, या हमारा संग ठीक नहीं है, या हमने चिंतन नहीं किया है, या हमने पढ़ाई से किनारा किया है, तो हमको रात को वैसे स्वप्न आएंगे। यह मुख्य रूप से हमने पिछले जन्म का चिंतन किया, क्योंकि शूद्र जन्म का प्रभाव भी बड़े लंबे समय तक रहता है, ऐसे छूटता थोड़ा नहीं है, क्योंकि जिस स्थान पर हमने नौकरी की है या वहां सर्विस की है, खाया पिया है, तो जैसा अन्न वैसा मन, वो मन जो अन्य संकल्पों के रूप में हमारी बुद्धि में है अभी तक भी है, वो तो बिना ज्ञानियों के खत्म नहीं होगा, वो खाली जागने से तो खत्म नहीं होने वाला। वो जब तक हम ज्ञान योग नहीं करेंगे, मन बुद्धि में अच्छे अच्छे संकल्पों को नहीं भरेंगे, तब तक वो जाने वाला नहीं है। तो हम दिनचर्या को जैसे बाबा की दिनचर्या जो बनी हुई है उसके प्रमाण नहीं चल रहे हैं, तो रात को जागने से कुछ नहीं होगा, वो तो हमको पहले दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी। दिनचर्या ठीक नहीं, रात फिर अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ पहले जो श्रीमत मिली है उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, और मन मत से हम एक नई श्रीमत का निर्माण कर रहे हैं। हाँ तो ये बड़ा बैलेंस, असंतुलित जीवन नहीं, बैलेंस होना चाहिए जीवन में। दूसरा क्या होता है आजकल, जो आत्माएं आएंगी, बाबा ने कहा अंत में आत्माएं कमजोर हो आएंगी, लेकिन उनको अपनी शक्ति से भी चलाना पड़ेगा और हमारा फर्ज बनता है उनको रास्ता बताना। हम अपने जीवन का कुछ ऐसा अनुभव सुनाएं कि जिन कमजोरियों को हमने समाप्त करने के लिए जो युक्तियां रची थी, ताकि उनको भी कुछ बल मिले, ताकत मिले, है ना। हम शुरू शुरू में आए तो हम जब हम विशाल भवन में रहते थे तो एक दो को अमृत वेले उठाते थे, क्योंकि हमको तो घर में भले वहां थोड़े साल रहे हैं, अमृत वेला किया है, लेकिन अज्ञान काल में तो आदत नहीं ना थी। यहां तो सारी टोटल दिनचर्या चेंज है। तो जब पटरी पर तक, जब तक गाड़ी पटरी पर नहीं आती, तो एक दो का सहयोग लेना जरूरी है। जैसे संडे के मुरली में जो हुआ, रात्रि मुरली बाबा ने वीडियो में चलाई, तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों का सहयोगी बनना है। तो हमें एक दो का सहयोग लेना है। अगर कोई हमारे संबंध संपर्क में आसपास में कोई भी है, अगर वो अपनी गलतियां सुनाता है, तो हमको सुनना है शुभ भावना शुभ कामना से उसको, और उसको सूक्ष्म रूप से अपनी शक्तियां देनी, शक्तियों का दान देना, उमंग उत्साह उसका बढ़ाना है। कोई बात नहीं, ये तो खत्म हो जाएगी कमजोरी, कौन सी बड़ी बात है, हमारे साथ भी हुआ ऐसे। तो उसको हम थोड़ा आथत देके उसको आगे बढ़ाएं, उसकी विशेषताओं को वर्णन करें, क्योंकि विशेषताएं तो उसमें, अच्छा विशेषता तो ये भी है ना, देखो रात को जाग रहा है, ये भी तो बहुत बड़ी विशेषता है। माना पुरुषार्थ उस कमजोरी को समाप्त करने के लिए कुछ तो युक्ति रच रहा है, वो लगन तो है, महान बनने का लक्ष्य तो रखा है। तो उस लक्ष्य को, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम उसको अपना सहयोग दें, उसको थोड़ा चेंज करें उसको। भले हम लौकिक घरों में रहते हैं, घरों में भी हमको एक दो का सहयोग देना, एक दो का सहयोग देने से जो दुआएं मिलेंगी वो दुआएं हमको कहीं भी काम कर सकती हैं। तो कमजोरियों की लिस्ट बनानी है, कैसे हम कमजोरियों को समाप्त करके मायाजीत बने और दूसरों को भी मायाजीत बनने का मार्ग दिखा सकें, कैसे वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएं। मायाजीत बनने के और बहुत साधन होते हैं, कुछ चिंतन करके कुछ लिखें, रोज 10-15 लाइन लिखें। अच्छा, खाली मुरली का वरदान स्लोगन याद रखें, उसको बार बार पढ़ें, सोचें, सुने, एक दूसरे चर्चा करें आपस में, तो भी हम मायाजीत बन सकते हैं। बैडमिंटन खेले हाँ, तो हाँ, मन के भिखारी, मानसिक अशांति है, तो मानसिक अशांति के जो घुस गई है तो शांति के भिखारी हैं, उनको बाबा ने कहा ना प्यार सुख शांति की अंजलि दो, बचाओ बचाओ, आवाज नहीं सुनने आ रही है। तो वास्तव में वो इन कानों से सुनाई तो नहीं देती, लेकिन संस्कार की हालत तो हमको वैसे दिखाई दे रही है, क्या हाल है। मनुष्यों की अनेक प्रकार की जो ऐसी विकटतम परिस्थितियां, उनको देख के पता तो चलता नहीं क्या हाल है, कितने दुखी हैं बेचारे। छोट दुनिया तो बाबा ने कहा ना अंतिम श्वास ले रही है, कभी गई समय का भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है और हो ही रहा है। अब हमें इतना बड़ा मूल्य समय मिल रहा है, ये हमारे हाथ से निकला जा रहा है, निकला जा रहा है, निकला जा रहा है। अगर हमको बता दिया जाए केवल आपके पास आज का ही दिन है, तो हम सोचेंगे ना भाई इतने लॉकडाउन में हमने क्या किया, कितना बहुत दुख होगा, पछतावा होगा, खून के आंसू अंदर ही अंदर बाबा ने कहा जार जार रोएंगे, दिन साकार मूल्य में था ना। तो सबसे ज्यादा तो सच में जो पश्चाताप ना हम ब्राह्मणों को होगा, संसार वालों को इतना नहीं होगा, क्योंकि उनको पता ही, उन्होंने किया ही नहीं कुछ, उनको तो पता ही नहीं इस चीज का। इसलिए सबसे जो महाभारत में सबसे ज्यादा सजा किसको मिली थी, युधिष्ठिर ने जो बताया था, ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा, क्योंकि समझदार है, उसको पता सारा सब कुछ पता होते हुए भी अगर हम फिर भी अपने कमजोरियों को अपना रहे हैं, बुराइयों को पकड़ के रखा हुआ है, अपना पता साफ कर लेते हैं, तो फिर कितना उसका है, दूसरों को इतना दुख नहीं होगा, हम ब्राह्मणों को ज्यादा दुख होगा। अभी भी अगर देखो, अगर थोड़ा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता तो कितना दुख होता अंदर में, पश्चाताप होता है। भले ऊपर से कोई कोई खुश दिखाई देगा, लेकिन अंदर से तो उसको पता होता है ना, खाता रहेगा, बिल्कुल खाता रहेगा। और सबसे बड़ी सजा है धर्मराज की, से तो वास्तव में ब्राह्मणों को भी मिलती है, खुशी गायब हो जाना, मुरली सुनने के लिए टाइम होते हुए भी नहीं सुनना, ये भी बहुत बड़ी सजा है। मुरली का चिंतन नहीं करना, मुरली याद नहीं रह पाना, योग के समय योग पर नहीं समय पर पहुंचना, होते हुए भी समय होता है लेकिन पहुंचना नहीं उसमें, तो धर्मराज की सजा तो है ना, कि भगवान का प्यार ऊपर से बरस रहा है और हम उसके किनारे बैठे हुए
हैं।
हाँ, योग में बैठे योग नहीं लग रहा, ये भी है, लेकिन बाबा ने उसमें भी दिया है, आपका योग लगे नहीं लगे आप बैठो जाके, क्योंकि उसके भी मार्क्स जमा होंगे, क्योंकि हमने छूटने का प्रयास किया, हाँ, उसके लिए फिर अगर हमारा योग नहीं लगता तो कहीं हमारी दिनचर्या में ढिलाई है, वो हम चेक करके फिर आगे बढ़े। तो धर्मराज की सजा तो हमको यही मिलती है, माया के रूप में आ रही है, वो खुद ही हमने माया से प्यार कर रखा, माया को पकड़ के रखा हुआ है। योग नहीं लगना या योग में बार बार नींद आना, ठीक है कभी कभार है, हमको हमने दवाई खाई है, कुछ भी किया है कारने कारने कुछ भी, लेकिन बार बार हम वहां लुढ़क रहे हैं जाके, दिनचर्या को कहीं हमने असंतुलित करके रखा हुआ है। इसे ज्ञान माना समझ है, हमको हर चीज की समझ मिली है कि संतुलन है, ऐसा नहीं एक तरफा ही हो जाए सारा, संतुलित जीवन होना चाहिए, हमारी रेस्ट भी ठीक ही होनी चाहिए और ज्ञान भी ठीक, योग भी ठीक, तब हमारी जीवन जीने का हमको मजा आएगा, नहीं तो हम खुद से खुद लड़ते रहेंगे, कब तक लड़खड़ाते हमारा जीवन चलता रहेगा। तो हमको अनेक प्रकार की ऐसे हम युक्तियां देखें कि माया जीत बनने का जो सह साधन है, किस किस तरीके से हम माया जीत बन सकते हैं, संगठन में रहें, चिंतन करें, मुरली को अच्छी तरह पढ़े, कुछ लिखें, सुने, गीत अच्छे सुने, योग के बिन में योग अभ्यास करें, योग के बारे में बार बार क्या क्या कहा है, खुद मुरलियों का कलेक्शन करें, किस तरीके से योग करना है, योग की कितनी विधियां हैं, कई विधियां हैं, असंख्य विधियां, कितने प्रकार के योग हैं, हमने एक बार मुरलियों से निकाला था जी, हाँ माया किस किस रूप में कौन कौन से दरवाजे से आती है, हमने एक बार योग के उसमें अव्यक्त वाणियों से सब वाणियों से निकाला था, तो शायद 43 या 45 प्रकार के बावन योग बताए, योग का नाम दिया था उसमें, उल्लिस से देखनी पड़ेगी कहा, जैसे राजयोग, कर्मयोग, सहज योग, उड़ता योग, ऐसे इस तरह के 45 थे, 43 या 45, तो ऐसे मुरलियों से हमको निकालना चाहिए। कुछ चार पांच ठोस विधियां हमारे पास होनी चाहिए कि योग में बैठते हमको क्या करना है, कौन से संकल्प करने हैं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, आत्मा समय परमात्मा को याद करना, ये भी हमको तुरंत याद आए। हाँ जी, हाँ रिसर्च से इंप्रूवमेंट होती है, तो मुरलियों को ढूंढना मना रिसर्च करना, उसमें हमारी खुद की प्रोग्रेस होगी, इंप्रूवमेंट होगा। हाँ पहले पहले जितने भी साइंस के साधन हम देख रहे हैं, पहले पहले उनका जो रूप था बहुत बड़ा था, वो विशाल था, रूप बड़ा दाम कम था, लेकिन अभी जैसे आप पहले कैसेट देख लीजिए, एक कैसेट में 6 गाने, 6 इधर 6 उधर, ए साइड बी साइड, है ना, और अभी एक चिप में लाखों कैसेट के सारे गाने उसमें भर गए, अगर ये सारे कमरे को हॉल को भर दिया जाए कितने कैसेट आ जाएंगे, और एक छोटी सी चिप कितना जगह कम हो गई, तो इंप्रूवमेंट हो गया ना उसका, चिंतन करते 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 करते। हाँ साइंस के साधन बाबा ने उनको भी याद किया कि तुम्हारे लिए इनका फायदा उठाओ, तो हमको इन चीजों का रियली फायदा उठाना है, खूब फायदा उठाना है, लेकिन यही साधन हमको डुबो ना दे, बस ये रखना है, ये हमारा आधार भी ना बन जाए बस, जब ये नहीं है तो भी चलेगा, और ये तो सचमुच जब चार्ज नहीं होगी तो क्या करेंगे इसको भी खत्म। कल बाबा ने कहा नोटबुक हाथ में रखो, तो हमको सचमुच याद है जब से हमने नोटबुक को सब इसके अंदर रखते तो अब ये खत्म हो जाए तो लिखा हुआ सारा इसमें चला जाएगा तो कम से कम नोटबुक में लिखा हुआ वही हाथ रहेगा हमारे हाथ में, तो रात को हम क्लास में लेके गए थे फिर से डायरी तो उसमें लिखा, और उसमें जो पुराना चिंतन आप देखो, आपने समझ लिया 10 साल पहले कोई चिंतन किया और देखा है लिख के रखा हुआ है, उसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको नशा चढ़ जाएगा एकदम, कि अच्छा ऐसा भी उससे कर सकते थे हम, उसमें लिखा हो तो अभी क्यों नहीं कर सकते,
वो अच्छी स्थिति में लिखा हुआ था,
हाँ अच्छी स्थिति में, और अपनी चीज जो बना के रखी होती है उस पर नशा अपना होता है, जो खुद आपने अपने खून पसीने से तैयार की हुई है चीज है उसका एक नशा होता अलग से, जली रोटी भी अच्छी लगती है, नमक ज्यादा तो भी अच्छा लगता है, तो हमको अपनी रोटी तैयार करनी है चिंतन करके, ताकि हम खुद उसको हजम करके अपने आप को शक्तिशाली बना सके, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। अच्छा, ओम शांति।